This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 14 सोमवध। पृथ्वीराज का विवाह इंद्रावती से हो चुका था। कांगड़ा के भोटी राजा भान से युद्ध में जीतकर पृथ्वीराज दिल्ली में खुशी मना रहे थे तथा इसी बीच में उन्होंने रणथम के राजा की कन्या हंसावती से भी विवाह कर लिया था। तभी उन्हें यह समाचार मिला कि गुजरात के राजा भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया है, क्योंकि भीमदेव बार बार अपमानित होने के कारण बहुत उत्तेजित हो गए थे। जब यह ईर्ष्या की आग वह किसी तरह अपने मन में दबाकर नहीं रख सके, तब उन्होंने अपने बहुत सारे सामंतों तथा अधीनस्थ राजाओं को साथ लेकर अजमेर पर धावा बोल दिया। जब यह समाचार सोमेश्वर जी चौहान के पास पहुँचा, तब वे भी शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस समय पृथ्वीराज दिल्ली में नहीं थे। उनके साथी वीर सामंत प्रसंग राय खींची, जयराम यादव, देवराज बग्गरी, भान राय, बलभद्र और कैमास आदि दिल्ली की रक्षा कर रहे थे। सोमेश्वर जी भी वीर पुरुष थे। उन्होंने अपनी बहादुर सेना लेकर अजमेर के पास ही भीमदेव को रोकना चाहा। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ और अंत में इसी युद्ध में 300 सैनिकों सहित सोमेश्वर जी भी मारे गए। जब यह समाचार पृथ्वीराज को प्राप्त हुआ, तब वह गुस्से से अधीर हो उठे। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब तक भीमदेव से इसका बदला नहीं ले लूंगा, तब तक सब तरह के आनंद त्याग दूंगा। यह तय करके उन्होंने उसी समय गुजरात पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। परंतु सामंतों ने उन्हें यह सलाह दी कि पहले अजमेर का राज तिलक हो जाए, तब इस काम में हाथ डाला जाए। अजमेर में राज तिलक का प्रबंध होने लगा। अजमेर की गद्दी के अधिकारी पृथ्वीराज ही थे। भीमदेव लाख कोशिश करने पर भी अजमेर पर अपना अधिकार नहीं जमा सका और लाचार होकर सोनगढ़ के किले में लौट गया। राज तिलक बिना बाधा के समाप्त हुआ और पृथ्वीराज ने पुज्जुन राय तथा मलय सिंह को सेना के साथ भीमदेव से बदला लेने के लिए भेज दिया। इन दोनों ने आगे बढ़कर भीमदेव के अधिकृत स्थानों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भीमदेव ने जब यह समाचार सुना तो गुस्सा होकर उन पर झपटा। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। पुज्जुन राय ने अपनी वीरता तथा चतुराई से भीमदेव के सिर का छत्र उतार लिया और लेकर चल दिया। पुज्जुन राय ने वह छत्र और छोंगा पृथ्वीराज को सौंप दिया, परंतु पृथ्वीराज ने पुरस्कार में वह पुज्जुन राय को ही वापस दे दिया और साथ में कुछ और धन संपत्ति भी दी। परंतु इतने से ही ये आग शांत नहीं हुई। जिस दिन से सोमेश्वर जी की मृत्यु हुई, उसी दिन से पृथ्वीराज गुस्से से अधीर हो रहे थे। भीमदेव उनके हृदय में कांटे के समान चुभ रहा था और गुस्से की आग उनके दिल में हमेशा जलती रहती थी। कुछ दिन और भी सोच विचार में बीत गए और अंत में यही विचार हुआ कि भीमदेव पर आक्रमण करना चाहिए। इसीलिए एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वीराज गुजरात पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। अभी वह तिलक लगवाकर अपने किले से बाहर निकले ही थे कि अपनी सेना सहित निंकर राय भी आ पहुंचा और पृथ्वीराज शिकार के बहाने गुजरात की सीमा पर जा पहुंचे। उधर भीमदेव के चतुर दूतों ने उसे भी सूचना दी कि 64,000 सेना लेकर पृथ्वीराज अपने पिता का बदला लेने के लिए सीमा पर आ पहुंचे हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीमदेव से बदला नहीं ले लेंगे, तब तक ना तो घी खाएंगे और ना ही पगड़ी बांधेंगे। यह समाचार पाकर उसने अपने अधीनस्थ राजाओं तथा अन्य सामंतों को इकट्ठा किया और 100,000 सेना लेकर पृथ्वीराज का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इधर पृथ्वीराज भी आगे बढ़ रहे थे। जब गुजरात की राजधानी पट्टनपुर थोड़ी दूर पर ही रह गई, तब पृथ्वीराज ने कवि चंद्र को एक चोली और लाल पगड़ी देकर भेज दिया और कहला दिया कि इसमें जो इच्छा हो वह भीमदेव रख ले। अर्थात या तो चोली पहनकर स्त्री बन जाए तब जान बचेगी, या लाल पगड़ी बांधकर युद्ध क्षेत्र में आ जाए तो उसके साथियों सहित उसके खून की नदी बहाकर पिता के नाम का तर्पण किया जाएगा। कविचंद ने चलते समय एक और भी खेल खेला। उसने अपने गले में जाल और सीढ़ी डाल ली तथा एक हाथ में कुदाली और दीपक और दूसरे में अंकुश और त्रिशूल लिया। इसी वेश में वह पट्टनपुर जा पहुंचा। उसका यह विचित्र वेश देखकर हजारों लोग उसके साथ हो लिए। इसी वेश में वह राज दरबार में जा पहुंचा। भीमदेव कविचंद को पहचानता था। उसने देखते ही पूछा, यह कैसा स्वांग रचा है? इस पर कविचंद ने कहा, हे राजन, पृथ्वीराज का कहना है कि यदि भीमदेव भागकर जल में जा छिपेंगे तो मैं जाल से खींचकर मारूंगा, यदि आकाश में जा चढ़ेंगे तो इस सीढ़ी से काम लूंगा, और यदि पाताल में जा छिपेंगे तो इस कुदाली से काम लूंगा, और यदि अंधेरे में जा छिपेंगे तो इस दीपक के सहारे खोज कर मारूंगा। भीमदेव यह सुनकर बहुत नाराज हो गए। उसने भी बदले में बहुत सारी बातें कहीं। वह कवि चंद पर भी बहुत नाराज हुआ, परंतु कवि का वध नहीं किया जाता था, इसीलिए उसने कवि चंद को तो कुछ नहीं कहा, पर सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज भी तैयार ही थे। आज के युद्ध के लिए उन्होंने निड्डर राय को अपना सेनापति बनाया तथा अन्य वीरों का बहुत सत्कार करके उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। युद्ध शुरू हो गया। कर्ण की आंखों की पट्टी खोल दी गई। वह शत्रु सेना पर बहुत तेजी से टूट पड़ा। कर्ण का सामना करने के लिए मकवान का पुत्र सारंग मकवान आगे बढ़ा। कर्ण की सहायता से हरि कंठीर तथा लोहाना जोर आजमाने लगे। मकवान का पुत्र कर्ण के हाथों फिर मारा गया। मकवान के मरते ही चालुक्य सेना कुछ दब गई, परंतु लड़ाई बंद नहीं हुई। इसी समय सारंग राय खींची ने इतनी जोर से आक्रमण किया कि चौहान सेना के दांत खट्टे होने लगे। यह देखकर पृथ्वीराज ने खुद भी घोड़े को ऐड लगाई, और क्षण भर बाद ही शत्रु सेना में हाहाकार मच गया और भीमदेव की सेना पीछे हटने लगी। ऐसे ही युद्ध होते होते शाम हो गई। बहुत सारे वीर मारे गए। इसी समय पृथ्वीराज और भीमदेव का सामना हो गया। दोनों पैंतरे बदल बदल कर तलवार का वार करने लगे। साथ ही दोनों दल के लोग अपने अपने राजा की रक्षा का उपाय करने लगे। अचानक कर्ण भी उस स्थान पर तभी जा पहुंचा। उसने भीमदेव को देखते ही क्रोधित होकर तलवार से एक ऐसा हाथ मारा कि भीमदेव का सिर कटकर दूर जा गिरा, जिसके उपरांत भीमदेव के मरते ही चौहान सेना जय जयकार कर उठी। स्वामी विहीन गुर्जर सेना पट्टनपुर की ओर लौटने लगी। इस युद्ध में पृथ्वीराज के तरफ के 1500 घुड़सवार, 500 हाथी और 5000 सिपाही मारे गए। जयत परमार बुरी तरह घायल हुआ। इसके बाद पृथ्वीराज ने भीमदेव के पुत्र को पट्टनपुर की गद्दी पर बिठा दिया और दूसरे ही दिन वहां से लौट आए।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।